एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
एकत्र ज्ञान गोष्ठी में फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो काफी सोचने पर मजबूर करती है।
हाँ, और शायद थोड़ी बेचैन भी कर सकती है।
बिल्कुल। किताब का नाम है जेनेटिक लॉटरी, समानता के लिए विज्ञान, और इसकी लेखिका है कैथरीन पेज हार्डन।
नमस्ते। और ये किताब इसलिए इतनी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये उस सवाल से सीधे सीधे टकराती है जिसे हम अक्सर मतलब नजरअंदाज कर देते हैं।
कौन सा सवाल?
यही कि हमारी पैदाइशी बनावट, हमारे जीन्स, हमारी जिंदगी की कहानी को कितना तय करते हैं, खासकर जैसे पढ़ाई लिखाई में, कमाई में, इन सब चीजों में।
हाँ, और जो सबसे हैरत वाली बात है वो ये कि हार्डन तर्क देती हैं कि ये मानना कि भाई जीन्स का असर होता है, ये असल में हमें ज्यादा बराबरी वाले समाज की तरफ ले जा सकता है।
है ना चौंकाने वाली बात, सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है।
बिल्कुल। पर आज के टाइम में जब मेरिट यानी काबिलियत और सबको बराबर मौके मिले, इन सब बातों पर इतना जोर है, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए करते हैं इस पर थोड़ी गहरी बातचीत।
हाँ, पर पहले जरा लेखिका के बारे में जान लेते हैं। कैथरीन पेज हार्डन, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में साइकोलॉजी की प्रोफेसर है।
और इनका खास काम बिहेवियरल जेनेटिक्स में है।
हाँ, व्यवहार आनुवांशिकी, ये वो फील्ड है जो ये स्टडी करती है कि हमारे जीन्स और हमारा माहौल दोनों मिलकर हमारे बर्ताव और हमारी जो अलग अलग खासियतें होती हैं उनको कैसे बनाते हैं।
अच्छा, और इनकी अप्रोच में क्या खास है?
इनकी खासियत ये है कि वो एक तरफ तो बहुत कठोर वैज्ञानिक हैं, मतलब अपने काम में बहुत सटीकता रखती हैं, लेकिन साथ ही वो सामाजिक बराबरी के लिए भी उतनी ही आवाज उठाती हैं। एक प्रोग्रेसिव विचारक हैं।
ये कॉम्बिनेशन तो रेयर है, खासकर जेनेटिक्स जैसे विवादित फील्ड में।
बिल्कुल। जेनेटिक्स की बातें अक्सर मुश्किल होती हैं। कुछ लोग इसके इतिहास जैसे यूजेनिक्स वगैरह से डरकर इसे छूना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो जेनेटिक तर्कों का इस्तेमाल गैर बराबरी को सही ठहराने के लिए कर सकते हैं।
और हार्डन?
हार्डन इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच एक बहुत बैलेंस्ड, समझदारी भरा रास्ता निकालने की कोशिश करती हैं। वो मुश्किल साइंटिफिक सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ती, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल भी नहीं होने देना चाहती।
मतलब दशकों का अनुभव है इनके पास।
हाँ, बिल्कुल। ट्विन स्टडीज यानी जुड़वा बच्चों पर स्टडीज, अडॉप्शन स्टडीज और आजकल की जो सबसे एडवांस्ड जीनोमिक तकनीकें हैं जैसे GWS, इन सब पर उन्होंने काम किया है। उनका एक मकसद ही यही है कि विज्ञान और जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज हैं उनके बीच की खाई को कैसे पाटा जाए।
दिलचस्प। तो फिर आते हैं किताब पर, जेनेटिक लॉटरी, इसका सार क्या है एकदम आसान शब्दों में?
एक किताब विज्ञान की सच्चाई और समाज में बराबरी लाने की जो हमारी इच्छा है उसे जोड़ने की एक, आप कह सकती हैं, हिम्मत भरी कोशिश है।
कैसे?
ये मानती है कि हाँ भाई, हमारे बहुत से गुणों पर और जिंदगी के नतीजों पर जीन्स का असर होता है। हम कितना पढ़ेंगे, कितना कमाएंगे, इन सब में जीन्स की भूमिका है, इसको नकारा नहीं जा सकता।
ठीक है, ये तो साइंस की बात हुई, लेकिन फिर बराबरी वाली बात कहाँ से आई?
यहीं पर आता है किताब का सबसे बड़ा आइडिया, जिसे वो कहती हैं जेनेटिक लॉटरी। हार्डन का तर्क ये है कि ये जो जीन्स हमें मिलते हैं ना, ये पूरी तरह से रैंडम है, किस्मत का खेल है।
लॉटरी की तरह?
बिल्कुल, लॉटरी की तरह। आपने ये जीन्स कमाए नहीं है, ना ही ने चुना है, ये बस आपको मिल गए। तो फिर अगर किसी की जेनेटिक लॉटरी अच्छी निकल जाए और वो जिंदगी में आगे बढ़ जाए, तो क्या वो पूरी तरह से अपनी कामयाबी का अकेला हकदार है?
और जिसे अच्छी लॉटरी ना मिले?
हाँ, या जैसे ऐसी लॉटरी मिले जो उसे कुछ मुश्किलें दे, तो क्या वो अपनी नाकामी का अकेला गुनहगार है? ये सवाल वो उठाती हैं।
समझ गया। तो ये किताब सिर्फ जेनेटिक्स की साइंस नहीं समझा रही?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का मैनिफेस्टो भी है, एक आवाज उठाती है कि इस जानकारी का इस्तेमाल हम एक बेहतर, ज्यादा इंसाफ वाला समाज बनाने के लिए कैसे करें।
तो ये उन दोनों तरह की सोच को चुनौती देती हैं, जो कहते हैं जीन्स ही सब कुछ हैं और जो कहते हैं जीन्स कुछ भी नहीं है।
एग्जैक्टली। ना तो जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, ना ही जेनेटिक डिनाइलिज्म, बीच का रास्ता।
ठीक है, तो ये लॉटरी वाला आइडिया वाकई सोचने लायक है। थोड़ा और गहराई में चलते हैं, किताब शुरू कहाँ से करती है?
किताब पहले जेनेटिक्स के मुश्किल इतिहास को मानती है, खासकर यूजेनिक्स यानी सुजननिकी का जो काला अध्याय था, जब इस विज्ञान का भयानक गलत इस्तेमाल हुआ नस्ली भेदभाव और दूसरी ज्यादतियों के लिए।
हाँ, वो तो बहुत ही बुरा दौर था।
बिल्कुल। और उस इतिहास के डर की वजह से ही कई लोग ब्लैंक स्लेट या कोरी पार्टी वाले विचार पर टिके रहे कि इंसान तो बस कोरी स्लेट की तरह पैदा होता है, सारे फर्क सिर्फ माहौल और परवरिश से आते हैं।
पर हार्डन कहती हैं कि ये अब साइंटिफिकली सही नहीं है।
हाँ, वो कहती हैं यूजेनिक्स भयानक था, वैज्ञानिक और नैतिक दोनों तौर पर गलत, लेकिन उसके डर से आज की साइंस, आज के सबूतों को नकार देना भी ठीक नहीं। आज हमारे पास पुख्ता सबूत है कि इंसानी फर्क सिर्फ माहौल से नहीं आते, जीन्स भी अहम भूमिका निभाते हैं।
और यहीं से वो मॉडर्न साइंस की तरफ ले जाती हैं।
हाँ, फिर वो हमें मॉडर्न साइंस के तरीकों के बारे में बताती हैं, जैसे पहले की ट्विन स्टडीज, अडॉप्शन स्टडीज।
हाँ, जुड़वा बच्चों की तुलना या गोद लिए बच्चों की स्टडीज।
बिल्कुल, लेकिन फिर वो आजकल की जो बहुत पावरफुल तकनीक है, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज यानी GWAS, उस पर फोकस करती है।
GWAS ये क्या है? आसान भाषा में सुनने में भारी लगता है।
है थोड़ा टेक्निकल, पर कोशिश करती हूँ। सोचिए जैसे लाखों लोगों के DNA को एक साथ स्कैन किया जा रहा है।
लाखों लोगों का? वाह।
हाँ, और उनमें उन छोटे छोटे जेनेटिक निशानों को ढूंढा जा रहा है जिन्हें SNPs कहा जाता है, जो किसी खास गुण या नतीजे से जुड़े हुए लगते हैं सांख्यिकीय रूप से।
जैसे कि
कोई इंसान औसतन कितने साल स्कूल गया, या किसी को Type 2 डायबिटीज होने का कितना रिस्क है। GWAS ऐसे हजारों छोटे छोटे कनेक्शंस ढूंढ सकता है।
ये तो बहुत पावरफुल तरीका लगता है।
है, और इन्हीं GWAS स्टडीज के नतीजों से बनता है पॉलीजेनिक स्कोर।
पॉलीजेनिक स्कोर ये क्या चीज है?
ये स्कोर हजारों या कभी कभी लाखों छोटे छोटे जेनेटिक प्रभावों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। ये एक सिंगल नंबर होता है जो बताता है कि किसी इंसान में किसी खास गुण के लिए जेनेटिक झुकाव कितना है।
जैसे
ज्यादा पढ़ाई करने की संभावना।
अच्छा, मतलब ये स्कोर बता देगा कि कौन कितना पढ़ेगा?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और हार्डन इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देती हैं, ये स्कोर किसी की किस्मत नहीं बताता, ये सिर्फ एक संभावना या प्रवृत्ति बताता है, प्रोबेबिलिस्टिक टेंडेंसी।
उदाहरण दे सकती हैं?
हाँ, जैसे मौसम का अनुमान होता है ना, कल 30% बारिश की संभावना है, इसका मतलब ये नहीं कि बारिश पक्का होगी ही, लेकिन ये जानकारी फिर भी काम की है। पॉलीजेनिक स्कोर भी कुछ वैसा ही है, ये किसी एक व्यक्ति के बारे में बहुत सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
लेकिन
जब हम बड़े बड़े ग्रुप्स की तुलना करते हैं, तब ये स्कोर काफी शक्तिशाली साबित होता है। औसतन जिनका स्कोर ज्यादा होता है, उनमें वो गुण ज्यादा पाया जाता है।
समझ गया। और ये पॉलीजेनिक स्कोर सिर्फ पढ़ाई से जुड़े हैं या और चीजों से भी?
यही तो दिलचस्प बात है। किताब दिखाती है कि पढ़ाई के लिए जो पॉलीजेनिक स्कोर है, वो सिर्फ स्कूल के सालों से ही नहीं जुड़े, बल्कि आगे चलकर आमदनी, नौकरी का रुतबा, यहाँ तक कि सेहत और लंबी उम्र से भी जुड़े पाए गए हैं।
मतलब इस जेनेटिक लॉटरी का असर जिंदगी के कई हिस्सों पर फैल सकता है,
ऐसा लगता है। पर सवाल ये है कि कैसे? क्या कोई अमीर बनने का जीन या लंबी उम्र का जीन होता है?
हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था।
हार्डन कहती हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई एक जीन नहीं है, बल्कि होता यह है कि जीन्स हमारे कुछ दिमागी और व्यवहारिक गुणों पर असर डालते हैं।
जैसे कि?
जैसे हम कितने लगनशील हैं, कितना खुद पर कंट्रोल रख पाते हैं, नई चीजें सीखने की हमारी क्षमता कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह। और ये वो गुण है जिनकी हमारे आज के समाज और अर्थव्यवस्था में काफी कद्र है, जिनकी वैल्यू है।
तो जिसे लॉटरी में ऐसे जीन्स मिल गए जो इन गुणों को थोड़ा बढ़ाते हैं,
हाँ, उसे एक तरह की बढ़त मिल जाती है। इसे वो जेनेटिक खुशनसीबी या जेनेटिक प्रिविलेज कहती हैं। और फिर अक्सर होता यह है कि ये शुरुआती बढ़त समय के साथ और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छे मौके मिलते हैं, अच्छा माहौल मिलता है।
लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी वार्निंग भी है ना, नस्ली या जाति को लेकर।
ओ हाँ, बिल्कुल, ये बेहद जरूरी पॉइंट है जिसे हार्डन बार बार रेखांकित करती हैं। वो कहती हैं कि इन जेनेटिक नतीजों का इस्तेमाल अलग अलग नस्लों या जातियों के बीच की जो गैर बराबरी है, उसे समझाने या सही ठहराने के लिए कतई कतई नहीं किया जा सकता।
क्यों नहीं?
क्योंकि GWAS स्टडीज आमतौर पर एक ही तरह की वंशावली या एंसेस्ट्री वाले लोगों के भीतर की जाती हैं, जैसे सिर्फ यूरोपियन मूल के लोगों के बीच। तो एक ग्रुप के अंदर जो जेनेटिक पैटर्न पाए जाते हैं, वो दूसरे ग्रुप पर लागू नहीं होते।
अच्छा,
तो जो पॉलीजेनिक स्कोर यूरोपियन एंसेस्ट्री वाले लोगों के लिए बना है, वो अफ्रीकन या एशियन एंसेस्ट्री वाले लोगों पर काम नहीं करेगा। नस्लीय ऊंच नीच या श्रेष्ठता के जो दावे जेनेटिक्स के नाम पर किए जाते हैं उनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये बात साफ होनी चाहिए।
ये बहुत जरूरी सफाई है। ठीक है, तो ये तो हुई विज्ञान की बातें, लेकिन आपने कहा था कि किताब का एक दार्शनिक पहलू भी है, वो क्या है?
हाँ, विज्ञान के बाद हार्डन नैतिकता और दर्शन पर आती हैं। वो कहती हैं कि अगर ये सच है कि हमारी जिंदगी की सफलता में जेनेटिक लॉटरी यानी किस्मत का भी हाथ है, तो फिर मेरिटोक्रेसी का क्या होगा?
मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता के आधार पर मिलने वाला इनाम या रुतबा।
हाँ, ये विचार कि लोगों को सिर्फ उनकी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो सब मिलता है जिसके वो हकदार हैं। हार्डन कहती हैं कि जेनेटिक लॉटरी की सच्चाई इस विचार को, इस मिथक को तोड़ती है।
कैसे?
अगर आपकी तथाकथित काबिलियत का एक हिस्सा ऐसा है जो आपने कमाया नहीं बल्कि लॉटरी में मिला है, जिस पर आपका कोई बस नहीं था, तो क्या आप वाकई अपनी सारी सफलता के अकेले हकदार हैं? क्या वो सब कुछ सिर्फ आपकी मेरिट है?
ये तो सोचने वाली बात है।
हार्डन कहती हैं, शायद नहीं। इससे जो लोग सफल हैं, उनका अपनी पूरी दौलत और रुतबे पर जो एक नैतिक दावा होता है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है।
ये सुनकर मुझे जॉन रोल्स का वो अज्ञान का पर्दा वाला थॉट एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है।
बिल्कुल, हार्डन भी रोल्स का जिक्र करती हैं। सोचिए, अगर आपको ये पता ना हो कि आप किस परिवार में पैदा होंगे, किस समाज में या किन जीन्स के साथ पैदा होंगे, तो आप कैसा समाज बनाना चाहेंगे?
जाहिर है, ऐसा समाज जहाँ किसी भी तरह की बुरी किस्मत का असर कम से कम हो।
हाँ, आप चाहेंगे कि समाज में पुख्ता इंतजाम हो, अच्छे स्कूल, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, शायद बेरोजगारी या गरीबी से बचने के लिए सुरक्षा जाल, ताकि अगर आपकी लॉटरी खराब भी निकले, चाहे वो सामाजिक लॉटरी हो या जेनेटिक, तो भी आप एक ठीक ठाक जिंदगी जी सकें।
तो मतलब जेनेटिक लॉटरी की सच्चाई हमें असल में ज्यादा बर्बरी वाले समाज की तरफ सोचने को मजबूर करती है।
हार्डिन का यही तर्क है। ये हमें ज्यादा समतावादी इगैलिटेरियन नतीजों की ओर धकेलना चाहिए, न कि गैर बराबरी को स्वीकार करने की ओर।
ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो इस पूरी चर्चा से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी?
पहली तो यही जेनेटिक लॉटरी वाली मेटाफर। ये याद दिलाती है कि पैदाइशी अंतर किस्मत का खेल है, कोई नैतिक योग्यता या कमी नहीं।
हाँ, न घमंड का कारण, न शर्म का। दूसरा,
नेचर वर्सेस नर्चर यानी कुदरत बनाम परवरिश की जो बहस है वो एक झूठा द्वंद्व है। असल में जीन और माहौल लगातार एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ये या तो या नहीं बल्कि ये और वो का मामला है।
बिल्कुल। तीसरा,
और ये शायद सबसे जरूरी है, साइंटिफिक फैक्ट्स की जेनेटिक असर होता है हमें ये नहीं बताते कि हमें समाज कैसा बनाना चाहिए। विज्ञान क्या है बताता है, क्या होना चाहिए ये हमारे नैतिक और राजनीतिक फैसले हैं। जेनेटिक असर समाज की गैर बराबरी को सही नहीं ठहराता,
बल्कि हार्डन के हिसाब से उसे कम करने की वजह बनता है।
सही। और चौथा पॉइंट इसी से जुड़ा है, शुद्ध मेरिटोक्रेसी यानी सिर्फ काबिलियत के दम पर सब कुछ मिलने का ख्याल एक मिथक है और शायद खतरनाक भी।
खतरनाक क्यों?
क्योंकि ये सफल लोगों में अहंकार और कम सफल लोगों के प्रति तिरस्कार पैदा कर सकता है। ये हमें भुला देता है कि सफलता में भाग्य का, चाहे वो सामाजिक हो या जेनेटिक, कितना बड़ा हाथ होता है।
और भारत में तो ये बात बहुत रिलेटेबल है ना? हमारे यहाँ परीक्षाओं में, करियर में सफलता वो अक्सर सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत मेरिट या मेहनत का नतीजा मान लिया जाता है।
बिल्कुल। जबकि कौन किस पृष्ठभूमि से आ रहा है, उसे कैसे मौके मिले, घर का माहौल कैसा था, और हाँ, शायद उसकी जेनेटिक लॉटरी कैसी थी, इन सब फैक्टर्स को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
अच्छा, और क्या मुख्य संदेश हैं?
एक और जरूरी बात है, वैज्ञानिक ईमानदारी। हार्डन कहती हैं कि हमें मुश्किल सच्चाइयों का सामना करना होगा, भले ही वो राजनीतिक रूप से असुविधाजनक हों। अगर हम वाकई असरदार नीतियां बनाना चाहते हैं तो जेनेटिक्स के रोल को समझने से इनकार नहीं कर सकते।
और वो व्यक्तिगत अंतर और समूह अंतर वाली बात?
हाँ, छठा पॉइंट, व्यक्तिगत अंतरों और समूह के औसत अंतरों के बीच फर्क करना बेहद जरूरी है। एक समूह के भीतर लोगों में जेनेटिक फर्क होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दो समूहों जैसे नस्लों के बीच का औसत फर्क जेनेटिक है। ये फर्क न समझने से वैज्ञानिक नस्लवाद का खतरा बढ़ता है।
समझ गया। और आखिरी मुख्य संदेश?
आखिरी संदेश शायद ये है कि इन सब बातों का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हार्डन के मुताबिक लक्ष्य समाज के संस्थानों और नियमों को इस तरह से डिजाइन करना है कि जेनेटिक लॉटरी का जो असर है उसे कम किया जा सके, न कि बढ़ाया जाए। हमें ऐसी नीतियां बनानी हैं जो सबको, हर किसी को फलने फूलने का मौका दें।
बहुत खूब। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी होंगी जो इन विचारों को पकड़ती हों, कुछ यादगार कोट्स या आइडियाज?
हाँ बिल्कुल, कुछ बातें बहुत पावरफुल हैं। जैसे एक जगह वो कहती हैं, जिसका भावार्थ है, जेनेटिक लॉटरी मिलना तो एक संयोग है, पर उसके नतीजे संयोग नहीं है।
मतलब
ये कि जीन्स तो हमें किस्मत से मिलते हैं, लेकिन उन जीन्स का हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा समाज कैसा है। समाज चुनता है कि वो इन अंतरों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा।
अच्छा, और
एक और, जेनेटिक्स की कारण शक्ति को मानना और जेनेटिक नियतिवाद कि जीन्स ही सब तय करते हैं को मानना एक ही बात नहीं है।
हाँ, ये फर्क जरूरी है। जीन संभावनाएं बनाते हैं, पक्की किस्मत नहीं लिखते।
बिल्कुल, माहौल, हमारे अपने चुनाव, मौके, ये सब बहुत मायने रखते हैं। फिर एक और विचार है, लक्ष्य जेनेटिक अंतरों को खत्म करना नहीं है, बल्कि सामाजिक गैर बराबरी पैदा करने की उनकी शक्ति को खत्म करना है।
यानी हमें सबको एक जैसा नहीं बनाना?
नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि लोगों के बीच जो अंतर हैं, चाहे वो जेनेटिक हो या कोई और, वो उनके जिंदगी की राह या समाज में उनकी हैसियत तय ना करें। नतीजों में बराबरी पर ध्यान देना है।
और वो मेरिट वाली बात पर?
हाँ, एक सीधी चोट, काबिलियत व्यक्तियों की जेनेटिक जायदाद नहीं है। ये वाकई हमारी सफलता और उपलब्धि के बारे में बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देता है।
और आखिर में वो सबसे चौंकाने वाला तर्क?
हाँ, जेनेटिक्स को गंभीरता से लेने का मतलब है समानता को गंभीरता से लेना। हार्डन मानती हैं कि जब हम ये समझते हैं कि हमारी सफलता में किस्मत, जेनेटिक लॉटरी का कितना बड़ा हाथ है, तो हम ज्यादा विनम्र बनते हैं और बराबरी के तर्क को और मजबूती से अपनाते हैं।
ये तो हो गए बड़े विचार। अब जरा सोचें कि इनका हमारी असल जिंदगी में, हमारी नीतियों में क्या मतलब हो सकता है। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन?
हाँ, कई हो सकते हैं। जैसे शिक्षा नीति में, अगर हम जानते हैं कि कुछ बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत, जैसे डिसलेक्सिया का जेनेटिक रिस्क ज्यादा है, तो हम उनके स्कूल में फेल होने का इंतजार क्यों करें?
हम उनकी जल्दी पहचान कर सकते हैं।
बिल्कुल, जल्दी पहचान करके उन्हें खास पर्सनलाइज्ड मदद दे सकते हैं। ये एक साइज सबके लिए फिट वाले रवैये से आगे बढ़ने जैसा है। भारत जैसे देश में सोचिए, जहां इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है पढ़ाई में, ये सोच हमें मदद कर सकती है कि हम सिर्फ टॉपर्स पर फोकस न करें, बल्कि हर बच्चे की जरूरत को समझें।
सही बात है। और सामाजिक नीतियों में?
सामाजिक सुरक्षा जाल, जैसे अच्छी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, शायद यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीजें, इनको मजबूत करने के लिए ये एक बहुत शक्तिशाली तर्क देता है, क्योंकि ये चीजें एक तरह से बीमा का काम करती हैं, सामाजिक और जेनेटिक दोनों तरह की बुरी किस्मत के खिलाफ।
यहाँ तक कि शायद क्रिमिनल जस्टिस में भी?
हाँ, कुछ हद तक। अगर हम मानते हैं कि कुछ व्यवहारों पर जेनेटिक प्रभाव हो सकता है जो शायद व्यक्ति के पूरे कंट्रोल में न हो, तो सजा पर फोकस करने के साथ साथ पुनर्वास और व्यक्ति को बेहतर माहौल देने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।
और हमारी अपनी निजी जिंदगी में, रोजमर्रा में?
मुझे लगता है ये हमें अपनी कामयाबियों पर थोड़ा और विनम्र बना सकता है और दूसरों के जो संघर्ष है उनके प्रति ज्यादा सहानुभूति जगा सकता है। अगर हमें लगता है कि हमारी सफलता में सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, किस्मत का भी हाथ है, तो शायद हम दूसरों को इतनी आसानी से जज नहीं करेंगे।
हाँ, और शायद दफ्तरों में भी, मूल्यांकन वगैरह में?
बिल्कुल, शायद हम ऐसे सिस्टम बनाने की सोचें जो लोगों को सिर्फ उनके आउटपुट से ना आंकें, बल्कि उनके हालात, उनकी शुरुआती पोजीशन, उनकी कोशिशों को भी ध्यान में रखें। ज्यादा न्याय संगत मूल्यांकन प्रणालियां।
और पेरेंटिंग में, बच्चों के लिए,
माँ बाप के लिए, ये शायद यथार्थवादी उम्मीदें रखने में मदद कर सकता है, ये समझने में कि हर बच्चा अलग है, उसकी अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। हमें हर बच्चे की उन यूनिक शक्तियों को निखारना चाहिए और सबके लिए एक अच्छा सपोर्टिव माहौल बनाने की अहमियत समझनी चाहिए। ये मानना कि हर बच्चा अलग है, पर हर किसी को फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए।
बहुत जरूरी बातें ये सब। तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे अहम सीख क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे अहम सीख यही है कि कैसे जेनेटिक्स की एक ईमानदार समझ, जो पहली नज़र में गैर बराबरी को बढ़ाने वाली लग सकती है, असल में बराबरी के तर्क को मजबूत करती है। ये थोड़ा अप्रत्याशित है, काउंटर इंटुएटिव है, लेकिन इस किताब का ये एक बहुत शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला संदेश है।
हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। और आपके लिए?
मेरे लिए तो ये जेनेटिक लॉटरी वाला रूपक ही दिमाग में बैठ गया है। ये हमारी योग्यता, हकदारी, इंसाफ, इन सब गहरी धारणाओं पर सवाल उठाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई हम अपनी सफलता के कितने असली मालिक हैं और एक समाज के तौर पर हमारी एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं।
ये किताब मुश्किल सवाल उठाती है।
हाँ, पर बहुत हिम्मत से विज्ञान और बराबरी के आदर्शों को जोड़ने की कोशिश करती है, और शायद आज के वक्त में इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये हमें एक ज्यादा हमदर्द, ज्यादा समझदार समाज बनाने की तरफ सोचने को प्रेरित करती है।
बिल्कुल, एक जरूरी बातचीत। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।